अच्छा चलिए अभी हम अपनी स्टडी करते हैं शुरू अपने सब्जेक्ट की। जो भी स्टडी किसी भी विज्ञान के किसी भी सब्जेक्ट की साइंटिफिक होती है, जिसमें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को यूज किया जाता है, तो उसे विज्ञान कहते हैं। इसी तरह से विज्ञान की एक शाखा है स्टैटिस्टिक्स, जिसमें उन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया गया है जिसके आधार से आंकड़ों को कलेक्ट करना, आंकड़ों को एनालाइज करना, अंकों को आंकड़े अंक फैक्ट्स डेटा, मैं पर्याय शब्द बोल रही हूं अभी, आपको सारे सिनोनिमस वर्ड्स बताऊंगी, हिंदी भी बोलूंगी इंग्लिश भी बोलूंगी दोनों बोलूंगी। और आपकी किताब में हिंदी किताब में हर पैराग्राफ के हेडिंग में इंग्लिश वर्ड दिया हुआ है, बीच बीच में भी जहां आवश्यक है वहां इंग्लिश वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको हिंदी नहीं, इनको इंग्लिश नहीं समझ में आती है, तो दोनों को हेल्प करूंगी मैं जहां जहां जितनी हेल्प कर सकती हूं, पर कोई मन में कंफ्यूजन नहीं रखना, ठीक है। तो बात चल रही थी अपनी कि साइंटिफिक स्टडीज जहां साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के आधार से डेटा को कलेक्ट किया जाता हो, फैक्ट्स को कलेक्ट किया जाता हो। आपके कितने भाई बहनों ने लास्ट ईयर एग्जाम दी पीसीपी पीसी में, ये पीजी डिप्लोमा में कितने भाई बहनों ने दी, मैं आपकी नहीं पूछ रही हूं टोटल। अच्छा आपने कहा 2000, तो ये आपने किस आधार से कहा 2000? एडमिशन का आंकड़े डेटा, एडमिशन के डेटा, राइट। कितने पास हुए, सपोज 1600 पास हुए एग्जाम्पल, या 1800 पास हुए, या 1900 पास हुए, या 2000 पास हुए एग्जाम्पल, राइट। तो ये जब आप डिक्लेयर करते हो कोई भी रिजल्ट, तो आपके पास ऑथेंटिक आंकड़े डेटा बेस कुछ आधार होता है, और उन आंकड़ों को डेटा को आपने सिस्टमेटिकली कलेक्ट किया है, सिस्टमेटिकली उसको क्लासिफाई किया है। नैमिचंद भाई आप कितने ज्ञानामृत हर मास भेजते हो, किस आधार से बोला ये आंकड़ा, कैसे बोला आपने, इट्स क्लियर क्लियर। तो डेटा कलेक्ट होते हैं हर कार्य में, और उन डेटा को आप क्लासिफाई करते हो। तो अगर गुप्ता भाई क्लासिफाई करेंगे कि एमएससी में इस साल कितने स्टूडेंट्स हैं, भाई 60 स्टूडेंट्स हैं। लास्ट ईयर कितने स्टूडेंट्स थे माउंट आबू के इस स्पेल में, तो कहेंगे भाई 120 स्टूडेंट्स थे। तो ये क्या किया इन्होंने कि लास्ट ईयर इतने स्टूडेंट्स ने आबू में एडमिशन लिया था, इस साल 7 स्टूडेंट्स ने आबू के पीसीपी स्पेल में एडमिशन लिया। तो ये सारे डेटा कलेक्ट होते हैं ना, फिर तुलना की जाती है, कंपैरिजन की जाती है, राइट। और कंपैरिजन क्यों की जाती है, टू नो द फैक्ट, टू नो द फैक्ट। तो विज्ञान का पर्पज है टू नो द फैक्ट्स, टू नो द ट्रूथ, वो विज्ञान की कोई भी शाखा हो। तो जहां आप कुछ सत्य बातें जानना चाहते हैं, तो बातों को जानने के लिए डेटा है, ये एक टूल है, टूल, ठीक है। अभी आपको ये देखने के लिए सीखने के लिए ये एक टूल है, साधन है, राइट। ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स वह विज्ञान है जिसमें इस प्रकार के डेटा को कलेक्ट करना, उनको क्लासिफाई करना, उनको एनालाइज करना, उन पर से इंफरेंसेस निकालना, और उन पर से एक फैक्ट्स, एक फैक्चुअल फैक्ट्स बताना और डिक्लेयर करना। आज रात आप न्यूज़पेपर में सुनेंगे कि तापमान कितना है, माउंट आबू की ठंडी कितनी डिग्री की है, ये क्या है, स्टैटिस्टिकल डेटा, राइट है। तो क्या वो हवा में बातें करते हैं जब डिक्लेयर करते हैं कि कुछ ऑथेंटिक डेटा कलेक्ट करके उसकी डिग्री माप करके हा? फिर वो टूल क्या है उनको मापने का, भाई एक साधन है वो, एक मीटर है उनके पास जिसके आधार से वो लोग नापते हैं कि ठंडी कितनी है, गर्मी कितनी है और अभी बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है इत्यादि, ठीक है ना। तो हर जगह आपको ये स्टैटिस्टिकल आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं जो साइंटिफिकली कलेक्ट किए जाते हैं। इसलिए हर आंकड़े स्टैटिस्टिक्स नहीं है, परंतु वे आंकड़े स्टैटिस्टिक्स कहे जाते हैं या उनमें शामिल किए जाते हैं जो साइंटिफिकली मेथड से, प्रिंसिपल्स के आधार से कलेक्ट किए गए हैं, एनालाइज किए गए हैं, क्लासिफाई किए गए हैं, उन पर से कुछ आपने इन्फरेंस यानी तारण, सम यू हैव डिराइव्ड सम कंक्लूजन्स, इन्फरेंस करना यानी यू हैव टू डिराइव सम कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन दैट, ठीक है, ओके okay? अच्छा, तो इस श्रृंखला में अभी आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर वन में आपको स्टैटिस्टिक्स क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एक छोटा क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर की स्टाइल देखी तो उसमें छोटा क्वेश्चन इस पर लास्ट ईयर भी पूछा था, इसलिए सम पार्ट विल बी देयर और ये बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव है, एक बार आपने पढ़ा समझ लिया आंसर लिख लोगे आप, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसकी यूजफुलनेस क्या है, और इस चैप्टर में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थात मीन, मीडियन एंड मोड, ये टूल्स हैं मेजरमेंट के। जैसे आप दूध किस में नापते हो, लीटर में नापते हो, राइट है। आप वो क्या बोलते हैं, बुखार, टेम्परेचर किस में मापते हो, ठीक है ना। तो हरे के एक नापने के कुछ मेजरमेंट होते हैं, वैसे इन आंकड़ों को वेरियस तरीकों से हम नापते हुए जो कंक्लूजन डिराइव करते हैं तो उसके कई तरीके हैं वो फाइंड आउट करने के, ठीक है। आप मानो एक कंपनी में 50 लोग काम कर रहे हैं और सबकी इनकम को अगर आप टोटल करेंगे और टोटल से आप 50 को डिवाइड करेंगे तो क्या कहा जाएगा उसको, शब्द क्या, एवरेज, औसत कहा जाएगा ना। तो वो जो औसत या एवरेज फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो तीन तरीके हैं, वो तीन तरीके यहां पर आपके किताब चैप्टर वन में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा है, उसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, और उसका मीन, मोड और मीडियन, ये तीन तरीके हैं एवरेज फाइंड आउट करने के। क्योंकि आंकड़े हर जगह एक प्रकार के नहीं होते हैं, अलग अलग डेटा होते हैं, तो एज पर द डेटा कहीं मीन उपयोगी है, कहीं मोड उपयोगी है, कहीं मीडियन उपयोगी, पर ये तीनों क्या देते हैं, आपको एवरेज वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो ये हम चैप्टर वन में सीखते हैं। अब मैं चैप्टर टू थ्री का अभी जिक्र, क्योंकि टाइम नहीं है इतना, अभी बाद में सिखाते समय आपको बताती जाऊंगी। तो स्टैटिस्टिक्स का आदि काल में पहले क्या मीनिंग लिया जाता था कि उसका उपयोग केवल मिलिट्री शासन या राज्य शासन के लिए एवं टैक्सेशन पॉलिसी जिसको फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, भाई टैक्स कैसे लागू करना है इत्यादि, केवल उस तक ही कन्फाइंड था इसका उपयोग। पर ग्रेजुअली धीरे धीरे विज्ञान की उन्नति के साथ साथ इसका स्कोप, इसका उपयोगिता, इन डेटा कलेक्शन की उपयोगिता इतनी वास्ट हो गई है कि आज हर ब्रांच में, आर्ट्स की, कॉमर्स की, साइंस की, टेक्नोलॉजी की, हर ब्रांच में, हर प्रोफेशन में इसका उपयोग हो रहा है, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब बताया है। तो स्टेटस, ये जो शब्द है लैटिन में भी यूज होता है, इटालियन में भी, जर्मन में भी, जिसका मतलब होता है स्टेट। तो पहले इसका मीनिंग इतना ही था, अब इसका मीनिंग वास्ट हुआ है। तो एक डेफिनेशन दी है यहां, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग, कंपेयरिंग, एंड इंटरप्रिटिंग न्यूमेरिकल डेटा. नंबर, न्यूमेरिकल शब्द किससे आया? नंबर, दे फिगर्स, आंकड़े, डिजिट्स, अंक, सब एक ही शब्द है. तो न्यूमेरिकल डेटा विच आर कलेक्टेड टू थ्रो सम लाइट ऑन एनी स्फीयर ऑफ इंक्वायरी. किसी भी फील्ड में आपको संशोधन करना है, खोज करनी है, कुछ जानकारी लेनी है, फैक्ट जाननी है, तो आप कैसे करोगे? आप डेटा को क्लासिफाई करोगे. अभी आपका आधार कार्ड बन रहा है, तो कैसे कर रही है भारत की सरकार, कैसे आप लोगों का आधार कार्ड बना रही है? पहले पूरे भारत देश को क्लासिफाई किया, किसमें किया? स्टेट्स में. फिर किसमें क्लासिफाई किया? सिटीज में. सिटीज से फिर आ गए उससे विलेजेस, या ये क्या बोलते हैं, टाउन्स, राइट है. फिर उसमें भी किन किन को क्लासिफाई किया? प्रोफेशनल ग्रुप वन, प्रोफेशनल ग्रुप, लिटरेट, इलिटरेट, मेल, फीमेल वगैरह, किया ना क्लासिफाई. तो इस तरह से वो डेटा कलेक्ट भी कर रहे हैं और फिर आपको आधार कार्ड भी बना के देंगे, जिसको भी पुनः नंबर भी मिलेगा उस आधार कार्ड को, है ना. सो एंड सो नंबर भी आपको मिलता है, आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका एनरोलमेंट नंबर आप लोगों को मिल रहा है ना परीक्षा के लिए. तो ये सारा न्यूमेरिकल डेटा कलेक्शन जो हो रहा है, जो इसको हम कहते हैं यहां स्टैटिस्टिकल स्टडी फॉर नोइंग सम इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल, क्या एक्चुअली है उस बात को जानना. तो इंपॉर्टेंस क्या है इसका? इट ट्रांसलेट द कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स. बहुत सारी आपके पास इंफॉर्मेशन है, पर उनमें से मुझे कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट्स जाननी है कि आपके 2000 विद्यार्थी अपियर हुए, उसमें से डिस्टिंक्शन कितनों ने लिया और फर्स्ट क्लास कितनों ने लिया. अब आपको डेटा मिल गया कि डिस्टिंक्शन मानो 200 स्टूडेंट्स ने लिया और मानो कि 500 स्टूडेंट्स ने फर्स्ट क्लास लिया और बाकी के ने कम लिया. कारण क्या? कारण है जिसके कारण सभी विद्यार्थी फर्स्ट क्लास या उससे अबाव नहीं गए, या मैक्सिमम रैंक डिस्टिंक्शन में क्यों नहीं आई, ये कारण आपको जानना है. तो आपके पास जब डेटा होगे, तो डेटा के आधार से उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए कि कौन से आंसर्स ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, कौन से आंसर्स अच्छे कर पा रहे हैं, ये क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, इनके मन बुद्धि की कहां कहां डिस्ट्रीब्यूशन या एंगेजमेंट है जिसके कारण. तो जब ऐसा आप एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलता है. कल हमारे इस बैच में, गुप्ता भाई आपको सुनकर बहुत सरप्राइज होगा, अपने इस बैच में, ये पीजी के क्लास में, अभी जो प्लेटिनम जुबली का फंक्शन हुआ मुंबई में, तो वहां अपने इस कोर्स के पैम्पलेट दिए जाते थे, तो एक आत्मा ने ये पैम्पलेट लेकर के यहां एडमिशन लिया है. तो उसने मुझे कल बताया अपना परिचय, वो कोर्स करना चाहती है, तो मैं रात को उसके साथ कोर्स कराने, 7 डेज कोर्स कराने बैठी. नाम तो मैं पूछा नहीं, भूल गई. हाँ, तो मैं उसको कोर्स कराने बैठी, तो क्या बताया उसने कि मैं भी साइको की ये हूं, क्या बोलते हैं, काउंसिलिंग करती हूं मैं. तो कहां करती हूं? भाई कॉलेज में. भाई क्या करती है कॉलेज में? तो बोला स्टूडेंट्स के, जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स अधिकतर फेल हो रहे हैं, तो काउंसिलिंग से पता चला कि क्या कारण है. तो उनका आपस में स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप है, वो कारण बना है उनको फेल करने के लिए. तो ये जो स्टडी है, ये जो एनालिसिस है, ये बहन जी ने जो डिराइव किया है और फिर उसको काउंसिलिंग से उनके इश्यूज को क्लियर कर रही है, राइट. तो इट ट्रांसलेट द कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स. अभी कॉलेज के प्रिंसिपल को कॉलेज चला रहे, पर सामने से पता नहीं चल रहा कि मेरे स्टूडेंट्स क्यों फेल रहे, तो भीतर में कारण कौन सा मिला? ठीक है, समथिंग एल्स. ओके, दूसरी बात, इट एनरिचेस एक्सपीरियंस. जो ये स्टैटिस्टिकल स्टडी है, उससे हमें कई बातों की सच्चाइयां पता चलती है. वी गेट द मोर एक्सपीरियंस ऑल्सो, जब कंपैरिजन आप करते हो कि नेशनल इनकम भारत की 1920 में क्या थी, 30 में क्या थी, 50 में क्या थी, 2000 में क्या थी, 2010 में क्या थी, जब आप लास्ट 10 वर्षों के आंकड़े नेशनल इनकम के राष्ट्रीय आय आपको कंपैरिजन करने, तो कॉम्प्लेक्स नहीं है ये, है कि नहीं है? तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड स्टडी हेल्प इट एनरिचेस एक्सपीरियंस इट लैंड्स प्रिसीजन, जो भी बात बताते हैं प्रिसाइजली इट गिव्स यू द नॉलेज अबाउट दैट सब्जेक्ट। जो पंड्या मणि भाई डिक्लेयर करेंगे कि भाई इतने स्टूडेंट्स अपियर हुए, इतने स्टूडेंट्स पास हुए, वो प्रिसाइज होगी, उसमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इट गिव्स नॉलेज ऑन नेशनल इनकम, ऑन प्रोडक्शन, ऑन कंजम्पशन पैटर्न, पॉपुलेशन, भारत की कितनी आबादी है, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास कौन कौन से हैं, कितने कितने हैं। आप कहते हो कि हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज है, हमारे पास काली जमीन है, लाल जमीन है, ये सारा आप किस आधार से करते हो? कैनाल सिस्टम है यहाँ पर हमारे पास। तो भारत की धरती को जब आप उसके रिसोर्सेज के आधार से डिवाइड करते हो तो कौन सा डायग्राम ड्रॉ करते हो? पाई डायग्राम, सर्कल डायग्राम, राइट? और सर्कल डायग्राम में आप उसमें डिविजन करके बताते हो, ठीक है? तो ये सारा स्टैटिस्टिक्स आपको मदद करता है। तो स्टैटिस्टिक्स केवल ये किताब में या एमएससी तक नहीं है, स्टैटिस्टिक्स आपके जीवन का एक अंग है, जिसके आप रोज रोज डेटा कोई ना कोई जगह से सुनते ही आते हो। इसका स्कोप है बहुत ही वास्ट, जैसे मैंने पहले भी कहा, सभी ब्रांचेस में आज इसका उपयोग है। आज कॉलेज में भी ज्योग्राफी का जो स्टूडेंट है वो भी स्टैटिस्टिक्स सीखता है, ज्योग्राफी आर्ट्स का विषय है तो वहां भी स्टैटिस्टिक्स सिखाया जाता है। मेथड फॉर कलेक्टिंग डेटा, बहुत सारी विभिन्न मेथड्स इसमें निकली हुई है, इस विज्ञान में, इस विज्ञान की इस शाखा में कैसे कैसे डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। इट इज अ मीन ऑफ साउंड टेक्निक फॉर हैंडलिंग एंड एनालिसिस एंड ड्रॉइंग वैलिड इंफरेंसेस। ये एक ऐसा माध्यम है, साधन है कि जिससे हम बहुत सारे तथ्यों को, फैक्ट्स को डिराइव कर सकते हैं, कंक्लूजन्स को डिराइव कर सकते हैं। कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में कितनी बहनें समर्पित है, तो आप कहते हो 5000। किस आधार से बोला? आपने डेटा क्लासिफाई किया, आपकी ऑफिस बनी हुई है यहाँ शांतिवन में जो ये कार्य कर रही है कि कितनी बहनें हैं, कहाँ है, ब्रह्मा कुमार कितने हैं, ब्रह्मा कुमारी कितने, समर्पित में भी करते हो ना आप लोग। तो ये सारी इंफरेंसेस आप निकालते हो, ठीक है? इट गिव्स द टूल्स ऑफ ऑल साइंसेस फॉर कोई भी ब्रांच ऑफ साइंस की, सभी को स्टैटिस्टिक्स क्या देता है? रिसर्च के टूल्स, अनुसंधान करने के साधन। इंटेलिजेंट जजमेंट मिलता है, रेकग्नाइज डिसिप्लिन है, ट्रेड, इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, बायोलॉजी, बॉटनी, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एजुकेशन का फील्ड, मेडिसिन का फील्ड, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सभी में इसका उपयोग है। तो स्टैटिस्टिक्स का ब्रॉड डिवीजन है डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल। अब डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है जैसे डेटा प्रोसेसिंग, टू समराइज एंड डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द डेटा। जैसे कि आपने एवरेज निकाला तो मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन जो चैप्टर 2 का टॉपिक है, कोरिलेशन कि प्राइस और डिमांड ये आपस में कोरिलेटेड है, तो इनका आप सहसंबंध कोरिलेशन जब स्टडी करते हो ये सारा डिस्क्रिप्शन कहा जाता है, डिस्क्रिप्टिव वे में एक्सप्लेन होता है। जबकि इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आप जिस विषय पर आप स्टडी करना चाहते हो, खोज करना चाहते हो, अनुसंधान करना चाहते हो, तो मानो कि आबू में ड्रग लेने वालों की, अल्कोहल जैसे कि ड्रग लेने वालों की आपको संख्या जाननी है तो कितने होंगे? मानो 1000 लोग है एग्जाम्पल। अब आप 1000 के पास क्या जाकर के क्वेश्चंस पूछते रहेंगे? तो आप क्या करोगे, इन 1000 में से उन लोगों को एज ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल चूज करोगे, सिलेक्ट करोगे। 1000 के पास नहीं जाओगे। मानो आप 500 के पास गए, 400 लोगों के पास गए, मानो अब 400 लोगों का जो आपने सर्वे किया, सिलेक्टेड सैंपल्स, और उससे जो आपने बात निष्कर्ष निकाला आपने, वो इन्फरेंस कहा जाता है। तो स्टैटिस्टिकल स्टडी में डिस्क्रिप्टिव भी है तो इन्फरेंशियल पार्ट भी है। किंतु इतना सब साइंटिफिक स्टडी देते हुए, आंकड़े देते हुए भी स्टैटिस्टिकल स्टडी की भी, एनालिसिस की भी कुछ लिमिटेशंस है। इट गिव्स यू ओनली एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स नॉट रिलेटेड विथ इंडिविजुअल्स। इट इज नॉट स्टडिंग क्वालिटेटिव फिनोमिनन जैसे कि इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, ये क्वालिटेटिव फिनोमिनन का इतना इसमें डायरेक्ट, सिवाय के एक स्केलिंग जो है, एक चैप्टर 4 में आता है आपका एक छोटा सा टॉपिक स्केलिंग मेथड्स, केवल उसमें थोड़ा सा ग्रेड मिलती है कि भाई कौन कितना इंटेलिजेंट है, किससे कम है, ज्यादा है, बाकी अदरवाइज आप पूरा स्टैटिस्टिक्स के ये सभी चैप्टरों में देखेंगे तो क्वांटिटेटिव फिनोमिनन है ये ज्यादा, क्वालिटेटिव मेजरमेंट कम है। लॉज आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, स्टैटिस्टिकल लॉज आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। इट इज लायबल टू बी, इसके डेटा हमें कभी कभी मिसयूज भी हो सकते हैं। देयरफॉर डेटा मस्ट बी यूनिफॉर्म एंड होमोजेनियस। इट्स फंक्शंस, इट प्रेजेंट्स फैक्ट्स इन अ डेफिनेट फॉर्म, कंडेंसेस मास ऑफ फिगर्स। मास ऑफ फिगर्स का मतलब है, समझो बहुत सारे आपके पास डेटा है, जैसे 3,07,000 ज्ञान अमृत जा रहे हैं, तो ये मास ऑफ फिगर्स कहे जाते हैं। अब उसका एक शॉर्ट फॉर्म बनाए करके, नेमीचंद भाई रोज तो रोज 3,07,000 का तो लिस्ट नहीं देखते होंगे, तो इन्होंने कुछ क्लासिफाई किया होगा। मेरा बहुत इनको पहले ही भी कहा था, पर इनको वक्त नहीं था, मैंने कहा था कि मुझे आपका जो ये क्लासिफिकेशन है आप कृपया दें, तो मैं विद्यार्थियों को इसके आधार से कुछ हेल्प कर सकूं। खैर बाद में कभी बैठ करके कर लेंगे इनसे। तो ये 3,60,000 का जो लिस्ट है उसको कंडेंस करना है, छोटा संक्षिप्त फॉर्म बनाना है, तो क्या करेंगे? जिस सेवा केंद्र पर एवं जिस स्टेट में 1000 से ज्यादा ज्ञानामृत जा रहे हैं, तो भाई साहब क्या करते होंगे लिस्ट में? रायपुर मोर देन 1000, महाराष्ट्र मोर देन 1000, अपना ये एमपी मोर देन 1000 एग्जाम्पल, फिर लेस देन 1000, फिर भाई समझो मैक्सिमम ज्ञानामृत कई जगह मोर देन 1000 जाते एग्जाम्पल, फिर लेस देन 1000 की भाई साहब स्टेट वाइज लिस्ट निकालेंगे, राइट है? फिर 500 से कम जहां जाते हैं ज्ञानामृत, फिर उससे कम, तो क्या होगा कि पूरे जो 3,60,000 जो आत्माएं मंगा रही है ज्ञानामृत, उसको उन्होंने एक ग्रुप में, विभिन्न ग्रुप में क्या कर दिया, बांट दिया। तो बांट दिया तो वो जो 3,60,000 इतने लंबे जो डेटा थे वो कहां कंडेंस होकर के कहां ग्रुपिंग हो गया उसका? एक है जो 1000 से ऊपर है, एक है जो 1000 से लेस है, एक है जो 500 से लेस है, इत्यादि, लाइक दिस। तो इसको कहते हैं मास ऑफ फिगर्स टू बी कंडेंस्ड, संक्षिप्त रूप में उसको आपने प्रेजेंट किया, ठीक है? अभी इसका ही आगे, ये मास ऑफ फिगर्स का एक छोटा सा सैंपल हमारी बुक में भी दिया है, वो भी मैं आपको समझाऊंगी। इट फैसिलिटेट्स द कंपैरिजन। चैप्टर 2 में आपको मीन डेविएशन है, एक मेजरमेंट का तरीका है। तो सोशियोलॉजी के विद्यार्थी एंड लैंग्वेज के विद्यार्थी दोनों के लास्ट ईयर के और इस वर्ष के, मानव स्कूल के विद्यार्थी है लास्ट ईयर के और इससे, तो सोशियोलॉजी में कितने आते हैं और इसमें कितने आते हैं लैंग्वेज में, तो कैसा उनका परफॉर्मेंस है, इसकी अगर तुलना आपको करनी है तो वो मीन डेविएशन से स्टडी होती है, राइट? तो कंपैरिजन, studies the relationship between two variables. Variable vary, V-A-R-Y, means जो change होता है, right? Price fix है या change होता है? Demand fix होती है या change होती है? तो जो चेंज होती रहती है, जिसके आंकड़े बदलते रहते हैं, उसको वेरिएबल कहते हैं और उसको हिंदी में चर कहते हैं. आपकी किताब में शब्द आएगा, इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं, हिंदी में उसको चर कहते हैं या परिवर्ती कहते हैं. ठीक है, तो क्या बताया, इट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, वेदर देयर इज इफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल अपॉन द अदर. ठीक है, ओके. इसके बहुत एग्जाम्पल्स बाद में आपको देंगे. इट एनलार्जेस एक्सपीरियंसेस, अनुभव बहुत बढ़ते हैं. फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है तो इन आंकड़ों के आधार से ही तो बनाती है. फिर इसमें हम कुछ परिकल्पना भी करते, एज्यूम करते हैं कि शायद ऐसा है, हा? कि भाई जो बच्चे स्कूल में पढ़ते भी हैं और खेल भी खेलते हैं, खेल में भाग लेते हैं, यू नो, गेम्स में, टूर्नामेंट में, तो यदि आपने एक परिकल्पना की, हाइपोथेसिस, यानी अज्यूम किया कि वे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं और खेल में भाग लेते हैं, उनसे वे बच्चे जो केवल पढ़ते हैं वो ज्यादा होशियार है, यह आपकी ऑब्जर्वेशन है. अब आप कितने सच्चे हो या आपकी परिकल्पना कितनी ट्रूथफुल है, वो आप डेटा कंपैरिजन से आप प्रूव कर सकते हैं. एट रैंडम आपने कोई भी स्टेटमेंट पास किया, इट इज नॉट वैलिड साइंटिफिकली, तो ये साइंटिफिक स्टडी में ऐसा एनालिसिस ऑथेंटिकली साइंटिफिकली उसको फिर पढ़ा जाता है, उसकी टेस्ट होती है, उस टेस्ट को अप्लाई करके, फॉर्मूला को अप्लाई करके एक निष्कर्ष निकाला जाता है कि हाँ, हमने जो सोचा, हमने जो ऑब्जर्व किया कि वे बच्चे जो खेल में भी भाग लेते हैं और पढ़ते हैं, उनसे जो खेल में नहीं लेते हैं वो ज्यादा होशियार होते हैं. ये हम स्टेटमेंट इन जनरल पास ऑन नहीं कर सकते बिना साइंटिफिक स्टडी के. हाँ, गलत सिद्ध हो जाए तो दूसरा हाइपोथेसिस, आपको उस डेटा से जो आपको फैक्ट मिलेगी ना, उसके आधार से आप दूसरा हाइपोथेसिस निर्माण करेंगे. तो स्पिरिचुअलिटी एम्पावर्स द वीमेन, ये मानो आपका एक स्टेटमेंट है, तो आपको उसके डेटा निकालने होंगे कि वास्तव में क्या स्पिरिचुअलिटी से वीमेन एम्पावर होती है या नहीं. यू हैव टू प्रूव इट विद द टेस्ट, विद द फॉर्मूला. ठीक है, उसके टी टेस्ट है, छोटा सैंपल है तो, और बड़ा सैंपल है तो जेड टेस्ट है, उसके फॉर्मूला उसके बने हुए हैं, कसौटियां. ठीक है, दूध में पानी है या नहीं तो आप वो एक मीटर डालते हो ना, मेजरमेंट का डालते हो ना, तो वो उसकी कसौटी हो गई ना कि भाई पानी वाला है दूध या प्योर है. ऐसे ही टी टेस्ट, जेड टेस्ट, ये अपनी ये जो किताब है, इन किताबों में बहुत डिटेल में है, पर ये तभी जरूरी है. ये चैप्टर या ये विषय क्यों आपको स्टैटिस्टिक्स दिया गया है, इसलिए दिया गया है कि आप डेजर्टेशन लिखने जा रहे हैं, तो डेजर्टेशन में जो आपका निष्कर्ष आप निकालना चाहते हो, जो आप हाइपोथेसिस फ्रेम करेंगे, वो हाइपोथेसिस कहां तक वैलिड है, वो टेस्ट करने के लिए आपके गाइड जो बनेंगे, जो भी आपके गाइड होंगे, उसको ये नॉलेज होती है कि इन टेस्ट को कैसे आपके डेटा में फिट करना. जो आपके डेटा निकलेंगे ना, प्रश्नावली आप बनाएंगे ना, तो प्रश्नावली से जो आपका रिजल्ट होगा उसको फिर वेरीफाई करना होता है. उसके लिए ये स्टैटिस्टिक्स का एक भंडार है. हमारी किताब में हम लिमिटेड अब पढ़ रहे हैं, बहुत कन्फाइंड वे में पढ़ रहे हैं, पर उसका गहराई भी है, तो आपको जितना आवश्यक है उतना ही यहाँ क्लास में हम पढ़ाएंगे, जो आपको यूजफुल है आपके डेजर्टेशन के लिए और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग, भविष्य जो तापमान का फोरकास्टिंग है, मेजर्स अनसर्टेनिटी. ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. तो ठीक है, अभी यहां तक क्लियर हो गई बात, मन बुद्धि सबकी चल रही है, यात्रा कर रही है साथ साथ. ओके, फैक्ट्स आर क्लासिफाइड आइदर इन वर्ड्स और इन फिगर्स. वर्ड्स में कैसे क्लासिफिकेशन होता है, लिटरेट एंड इलिटरेट का, फॉर एग्जाम्पल टू आपने पीपल को, लोगों को क्लासिफाई किया, भाई ऐसे लोग और ऐसे लोग, राइट है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इनटू फिगर्स, अंकों में, ठीक है। यहां फिगर का मतलब आकृति की अर्थ नहीं लेना, यहां फिगर्स का मतलब है नंबर्स, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर्स कंडेंस द डेटा इन एन अरेंज्ड फॉर्म। बहुत सारे आंकड़े हैं, उनको आप संक्षिप्त रूप में रिफ्रेम करके लिख रहे हैं, कैसे वो आगे बताते हैं आपको, तो इसको भी क्लासिफिकेशन कहा है। जिसमें एक नाम यहां आपको अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आंकड़ों का वितरण, राइट। तो अब आंकड़ों का वितरण यानी व्यवस्था करना, व्यवस्थापन, उन्हें सिस्टमैटिकली बनाना, पर सिस्टमैटिकली इस तरह बनाना जिससे कि वे संक्षिप्त रूप में, जो ज्यादा डेटा थे उसको संक्षिप्त रूप में आपने लिखा। अब यहां फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर ग्रुप में कितने लोग शामिल होते हैं। 100 विद्यार्थी है गणित के विषय के, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 मार्क्स लिखेंगे ना, 100 विद्यार्थियों के अलग अलग जो भी मार्क्स मिलेंगे तो कितना ग्रुप बन जाएगा, इतना बड़ा बन जाएगा ना। अब अगर आप ये लिखो कि आपके मिनिमम पासिंग मार्क 40 है, तो आप क्या लिखोगे, 40 से 50 के मध्य 13 विद्यार्थी, राइट। फिर 50 से 60 के मध्य है, हाँ, तो आपने क्या किया, जो विद्यार्थियों को, 100 विद्यार्थियों को आपने ग्रुप वाइज डिवाइड किया, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इंडिविजुअल मार्क्स आपने वो पूरे 100 को एक 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, या आप ऐसा भी कर सकते 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, तो कंडेंस हो गए ना ग्रुप फिगर्स, कंडेंस हो गए कि नहीं हो गए, कि 100 विद्यार्थी कितने क्लास में आ गए, कितने ग्रुप में आ गए, 3 ग्रुप में, 40 से 60, ओके। अब ये किस आधार से ग्रुपिंग बनता है, ये बाद का बातें हैं, पर एट प्रेजेंट ये जो आप इस तरह से विभिन्न ग्रुप में, जिसको यहां स्टैटिस्टिक्स की भाषा में, हिंदी में वर्ग कहते हैं, राइट, ओके, और इंग्लिश में क्लास कहते हैं, राइट। तो 30 to 40 ये एक क्लास हुआ, वर्ग हुआ, राइट। तो 30 to 40 के बीच में जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कितने का है, 10 का है। 30 से 40 में 30 भी गिनती हो रहा है, 40 भी हो रहा है, नहीं भाई साहब 30 भी हो रहा है, 40 भी हो रहा है, तो कितने होंगे, 31 से 40 9 होंगे, क्या गुप्ता भाई, एक मिनट, हाँ वही ना, वो आगे का क्लासिफिकेशन आपको हम बताएंगे। तो कहने का मतलब सार में आप ये पकड़ो, हाँ, तो 30 से 40 का एक क्लास है, आपका वर्ग है, बात वो नहीं है, अभी बात ये चल रही है कि जो ये अंतर है ना, डिफरेंस जो है, डिफरेंस की अपना अभी फोकस है डिफरेंस पर, राइट। वो जो डिफरेंस है ना, उसको इंटरवल शब्द कहते हैं। मैं आपको टर्मिनोलॉजी से फैमिलियर भी साथ साथ करती जा रही हूं, क्लास इंटरवल। आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखो, उसमें पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में क्लास इंटरवल, व्हाट इज क्लास इंटरवल, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये शब्द पूछे गए हैं, इसका मतलब पूछा गया है, और ये फाउंडेशन है पूरा आपका, ये सिलेबस जो है इस साल का स्टैटिस्टिक्स का। अगर आपने ये क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये बेस है, ये समझ लिया, तो बाकी के सारे टॉपिक्स इजी इजी और इजी है। तो पहले फोकस करो बुद्धि में, समझे इस बात को। तो जो ये डिफरेंस है, अंतर है ना आपस में, ये इंटरवल जो गैप है, गैप जिसको अंतर कहते, गैप कहते हैं, इसको क्लास इंटरवल कहा। आप डे टू डे लैंग्वेज में क्या कहोगे, अंतर कहोगे, गैप कहोगे, डिफरेंस कहोगे, स्टैटिस्टिक्स की बात है ना, उसे क्लास इंटरवल का कोई ऐतराज है हमें, कोई रॉन्ग है इसमें, स्पैन, स्पैन भी कहते हैं, ये सारे सिनोनिमस वर्ड्स है, तो मूझना नहीं है शब्दों की जाल में, ठीक है, इट इज अ क्लास इंटरवल, ठीक है। ओके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन, अभी क्या है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक टॉपिक है आपका पूरा। अगर इस पे बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं तो जो नोट्स हमने आपको दी है वो आपके असाइनमेंट के लिए उपयोगी है, और अगर बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें मैंने भरपूर आपको एक्सप्लेनेशन दिया है कि लंबा क्वेश्चन पूछे तो आप किताब में हमारे जो एक्सप्लेनेशन है वो सफिशिएंट नहीं है लंबे आंसर्स के लिए, तो लंबे आंसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ी सी नोट्स दी है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन लार्ज डेटा आर शोन इन स्मॉल क्लास ग्रुप, 100 विद्यार्थी के मार्क्स आपने 40 से 60, 60 से 80, 100, 80 से 100, इस बीच में लार्ज ग्रुप ऑफ मार्क्स शोन इन स्मॉल क्लास ग्रुप, कैसे अभी जो बताया स्मॉल क्लास ग्रुप बता दिया, इन डिफरेंट वेज, उसमें डिफरेंट वेज कौन कौन से है तो यहां आपको बताते हैं, डस्टर कहां है इसका, ठीक है। तो एक होते हैं इंडिविजुअल सीरीज, पांच विद्यार्थी मानो एग्जाम्पल हमने लिए, ओके तो पांच विद्यार्थी को, एक को गणित में 30 मिले हैं, एक को 55 मिले हैं, एक को 40 मिले हैं, एक को फेल हुआ है और एक को 80 मिले, राइट ठीक है। इस सीरीज को, इस रीति से आंकड़ों को लिखने की पद्धति को इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं, ठीक है। पर ये कब कब कर सकते हैं, इस तरह कब लिख सकते हैं, जो बहुत थोड़े हों, पांच पांच है केवल, तो मैं ऐसे लिख सकती हूं, सहज है ना। पर जब ज्यादा हो जाते हैं तो फिर हमें इस इंडिविजुअल सीरीज के बदले खंडित सीरीज इसका नाम है, ओके इस रीति से करना होता है। अब आपके किताब खोलिए, अब आ जाइए किताब में, वो टेबल जो आपको दिया गया है मैं भी इसमें दिखाऊंगी आपको, कहो तो अभी मेरी इससे ही दिखा दो, चलो ये टेबल भी चलेगा, ये एक बहुत सिंपल टेबल है किताब के अलावा, एक आपको जल्दी याद रह जाए ऐसा एक टेबल बनाया है। डेटा क्लासिफाइड विथ क्लास इंटरवल, ओके इसमें जो लोग हैं या जिसके ऊपर ये जिसके डेटा है उसको एक्स भी कहते हैं, वस्तु या व्यक्ति जिसके भी ये आंकड़े हैं, या उसे फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, तो 13, 27, 30, 23 एंड 5, ओके अब यह दो प्रकार से आपको आंकड़े दिए गए हैं। इस तरफ जो दिए गए हैं ये भी एक पद्धति है बड़े ग्रुप को क्लासिफाई करने की, छोटे ग्रुप में वो भी एक पद्धति है, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70, 70 टू 80, राइट। तो 30 टू 40 में 13 है, 40 टू 50 में 27 है, 50 टू 60 में ये। अब थोड़ी पल के लिए अभी अभी आप उस तरफ का जो क्लास है अभी आप वो सारी कंटिन्यू सीरीज आप नाम देती हूँ, एक मिनट पहले बेसिक समझ ले आप, इस तरफ आ जाइए। अब यहाँ जो सीरीज है बनाई आंकड़ों को लिखने का, अभी मैं केवल आपसे डिस्कस कर रही हूँ तरीके, विभिन्न तरीके सीख रही, उनके पर्टिकुलर जो स्टैटिस्टिकल नेम है वो अभी आपको बाद में समझा दे, पहले ये समझ लो इसके आंकड़े कैसे लिखे जाते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे कैसे होता है। इस रीति से भी हुआ, इंडिविजुअल सीरीज से भी हुआ, अभी अपन केवल यही डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे विभिन्न तरीकों से आंकड़ों को लिस्ट आउट किया जाता है, उसका लिस्टिंग जो बनता है वो कैसे अलग अलग तरीकों से किया जाए। एक वो तरीका था, एक ये तरीका है 30 to 40 वाला, राइट है ओके। अब यहां पर क्या है, यह 30 to 40 नहीं है, इस तरफ 39 है, ठीक है, फिर 42, 49, तो हर जगह एक कम है, ठीक है। और आपकी किताब में भी जो टेबल है वो पहला टेबल इस तरफ का है, इस जैसा है। ओके अच्छा, क्यों ये दो तरीकों से टेबल अलग अलग बनते हैं, कब क्यों? अब मैं आपको इसका अर्थ समझाती हूं, फिर आगे स्लाइड्स भी देखेंगे उसमें भी समझते जाएंगे। ये सरस्वती ट्रेनिंग सेंटर है, राइट? ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है। मानो इसमें 10 कमरे हैं, एग्जाम्पल, तो आप 10 कमरों को 10.5 लिखोगे, 9.5 लिखोगे, क्या लिखोगे? फ्रैक्शन में लिखोगे, कंप्लीट है। परिवार में आपके बच्चे कितने हैं तो आप क्या लिखोगे? फ्रैक्शन में लिखोगे या फुल अंक लिखोगे? फुल अंक लिखोगे। रन क्रिकेटर ने किए तो आप कैसे लिखोगे? आधा रन लिखोगे? फुल। तो जहां पर आपको पूर्णांक, हिंदी वाले सुन लेना शब्द पूर्णांक, इंग्लिश वाले सुन लेना शब्द होल नंबर, जहां आपको होल नंबर या पूर्णांक अंकों में, आंकड़ों में, डेटा में आपको उस ग्रुप को क्लासिफाई करना है, ऐसे आंकड़े इस तरफ की जो टाइप है इंक्लूसिव, जिसको हिंदी में समावेशी मेथड कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या है यहां? 13, 27, 30, 23, 5, राइट? वे लोग कितने इसमें? 13 है पहले ग्रुप में, दूसरे में 27 है, तीसरे में 30 है, चौथे में 23 है, पांचवे में 5 है लोग, पांचवे ग्रुप, राइट है? ओके तो जब आपको उस तरह के आंकड़े जहां आपको फुल नंबर में एक्सप्रेस करने हैं तो आपको इस मेथड से क्लासिफिकेशन उस ग्रुप का लिखना होगा, यहां वाली मेथड इंक्लूसिव। क्यों? क्यों? शब्द पढ़िए इंक्लूसिव, इंक्लूडेड मींस क्या? कि इसमें 30 से 39 तक की काउंटिंग शामिल है, 39th वाला भी व्यक्ति इसमें शामिल है। ओके फिर 39 to 40 के बीच में 39.5 भी हो सकते हैं, वो इसमें शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे हाफ नहीं होते हैं, रन हाफ नहीं होते हैं, या कमरों की संख्या हाफ ओवर, ठीक है? तो जिस प्रकार के आपके सामने लोग हैं जिस पर आप संशोधन कर रहे हैं, क्या आपका विषय है या कौन सी चीज पर आप संशोधन कर रहे हैं, अगर विज्ञान में वो नेचुरल आप नहीं, ये फिजिक्स वगैरह में कोई दूसरे ऑब्जेक्ट पर, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट पर आप अगर करते हैं तो वो वस्तु पदार्थ पर है, तो जिस प्रकार का आपका संशोधन है उस प्रकार का आपका आंकड़ों का क्लासिफिकेशन होता है, वो उस समय अपने आप समझ में आता है, ठीक है? तो अगर आपको सोचना है कि आबू में कितने बच्चे हैं, बालक कितने हैं, तो आप क्लासिफिकेशन पूरे आबू के बच्चों का इस कैटेगरी से करोगे। इट्स क्लियर नाउ? ओवर। इसको इंक्लूसिव क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें वो 39th वा भी इंक्लूडेड यानी काउंटिंग होता है, वो रिपीट नहीं होगा फिर 40 में 40th नंबर वाला ही शामिल होगा। तो पूर्णांक होल नंबर में इस तरह आंकड़ों का क्लासिफिकेशन होता है। अब उस तरफ आते हैं, यहाँ 40 इज एक्सक्लूसिव, विच वन इज गेटिंग रिपीटेड? दो फर्स्ट दो क्लास में कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है?
30 to 40।
इसकी कंपैरिजन ना करो, ये पूरी कैटेगरी डिफरेंट है। इसको ना, अभी इसको थोड़ी पल के लिए भूल जाओ, इस तरफ के क्लासिफिकेशन इंक्लूसिव को भूल जाओ, अभी अपन एक्सक्लूसिव पर आ रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव में कौन सा अंक दो बार आ रहा है? 40 सबसे पहले 40, तो क्या दो बार उस व्यक्ति की गिनती करोगे आप? तो उसका साइंटिफिक प्रिंसिपल है ये, स्टैटिस्टिक्स में एक इस मेथड का एक सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? कि 40वां व्यक्ति पहले ग्रुप से काउंटिंग करते समय एक्सक्लूड हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, और इसको हिंदी में अपवर्जी वर्ग या क्लास कहते हैं। अपवर्जी, यहां समावेशी वहां अपवर्जी। हम फिर से दोबारा भी इसको स्लाइड के माध्यम से देखेंगे, पर एट प्रेजेंट आप क्लियर समझ। अब क्यों? तो 48 को कहां गिनती किया जाएगा? 40 to 50 में गिनती किया जाएगा, ठीक है, ओके। फिर 50 को सेकंड में नहीं किया, सेकंड रो में नहीं किया, गिनती किया जाएगा। 58 को थर्ड में गिनती किया जाएगा, ओके। अब एक और बात सुन लेना, आप सभी की हाइट गुप्ता भाई को जाननी है कि ये साल के एमएससी के जितने भी विद्यार्थी है उनकी हाइट क्या है। तो क्या सभी की फुल नंबर में हाइट होगी? फ्रैक्शन में होगी ना, तो वो जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, किसी की 5.2 है, किसी की 5.6 है, किसी की 6 है, किसी की 6.7 है, 4 है, चलो बहुत लंबा कोई नहीं है, ओके 6.4 है एग्जाम्पल, ओके। तो वो व्यक्ति 40 फर्स्ट क्लास में लिखा है, वर्ग में लिखा है, और फिर दोबारा क्यों दोबारा यहां 40 लिखा गया है? इसलिए लिखा गया है ताकि बीच के जो भी फ्रैक्शनल हाइट वाले लोग हैं वो भी काउंट हो सके, 40.2 वाले भी, 40.3 वाले भी, 40.5 वाले भी, 40.9 वाले भी उसमें शामिल हो सके। इसलिए अब पुनः आती हूं, तो 30 से 40 के बीच में, तो 40 से लेस आंकड़ा कौन सा होगा? 39.9, राइट है। तो वहां तक के लोग फर्स्ट ग्रुप में शामिल हो गए, बाकी 40th वाला सेकंड में, इसी तरह वहां भी सेकंड ग्रुप में, लाइक दिस। तो दिस इज अ मेथड, उसमें कुछ प्रिंसिपल्स है ताकि डुप्लीकेशन ऑफ काउंटिंग ना हो और कोई छूट भी, चाहे कोई भी हाइट वाला विद्यार्थी है वो छूट न जाए। चाहे आप इस शांतिवन के बहुत सारे ट्रीज है, यहाँ वृक्ष हैं, उनकी हाइट नापना चाहते हो, दूसरे ग्रुप में समझो उसकी केवल 40 है तो वो सेकंड में ही शामिल होगा। डुप्लीकेशन ऑफ द काउंटिंग शुड नॉट बी देयर एंड यू कैन गेट द एक्यूरेट रिजल्ट उसमें, हाँ स्लाइडली लेस तो वो फर्स्ट ग्रुप में जाएगा। इसलिए ये दो तरीकों से क्लासिफिकेशन है जब डेटा लार्ज है। बाकी पांच लोग हैं तो अपने आप इंडिविजुअल सीरीज बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो दो क्लास है, अपवर्जी समावेशी या एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव, इसके अलावा एक तीसरा क्लास है छोटा सा, उसका नाम है ओपन एंडेड क्लास, खुले सिरों वाला वर्ग, विविध मुखी वर्ग, ठीक है। क्यों? यहां आपने 30 लिया है मिनिमम, राइट, समझो ये 30 से 40 लिखा है ना, उसके बजाय एक और ऊपर कैटेगरी है, मानो कि 30 से कम और नीचे लिखा है 80 से ज्यादा। तो 30 से कम में कुछ भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और 80 से ऊपर में 100 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, और 100 से ऊपर भी हो सकता है, एनी फिगर। तो जहां यहां पर 30 से कम में कोई भी फिगर है और यहां जिसका कोई स्पेसिफिक आंकड़ा नहीं है, इसको कहते हैं उसको सिर नहीं है, खुला सिर है। उस वर्ग को क्या है? सिर नहीं, इसलिए खुले सिरों वाला वर्ग, अर्थात इंग्लिश में उसको कहा है ओपन, राइट? याद रह गया? तो जो इसका नाम है उस क्लास का, उसके साथ उसका अर्थ समाया हुआ है, तो अर्थ के साथ याद करोगे तो क्या है, सीधी सीधी बात है, सब याद रह जाएगा। ओपन एंडेड क्लास, राइट? समझ में आ गया? ओके। हाँ हाँ, बीच वाले एज इट इज रहेंगे, बिगिनिंग एंड एंड में अगर उसकी ऐसी मर्यादा कोई बांधी नहीं गई है, इसमें मर्यादा बांधी गई है। हाँ, ये 30 से 80 के बीच की ही फिगर्स वाले हैं इसमें शामिल, राइट? है ना? तो जहां कोई लिमिट नहीं है, मर्यादा नहीं है उसमें आगे, तो फिर उसको ओपन एंडेड, तो ऐसा भी एक क्लास है। ये अभी जिक्र चल रही है तो साथ साथ आपको इसके रेफरेंस में समझा रहे हैं। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो जहां लार्ज डेटा है वहां फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, जैसे 100 स्टूडेंट्स का ग्रुप, अच्छा यहां आपने चल रही थी खंडित वाली, तो ये जो अभी आपने देखा स्लाइड, पुनः इसमें आते हैं, ये भी बता दूं, ये जो स्टाइल थी ना इस तरफ की इंक्लूसिव, ये खंडित सीरीज है, डिस्क्रीट या खंडित है। तो इसमें देखो, एक क्लास और दूसरे क्लास के बीच में एक आंकड़े का ब्रेक है ना? ओके, ठीक है ना? याद रहा ना? तो ये खंडित सीरीज है और वो कंटिन्यूअस सीरीज कही जाती है, ठीक है? अब बहुत इससे भी बड़ा ग्रुप हो तो उसको ग्रुप डेटा कहते हैं, राइट है? तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब यहां फ्रीक्वेंसी शब्द फिक्स बैठा या नहीं, थोड़ा समझना चाहती थी आप लोगों से। उस कैटेगरी या उस अंक के आसपास के जितने भी लोग हैं वो 30-40 में शामिल किए गए। बार बार मैं उन सबको लिखूं इसके बजाय, इस जैसे यहां था ना, पहला 13 था ना इस सीरीज में, 13 था ना, तो उन 13 लोगों के मैं सेपरेट बजाय मैंने 13 को जो फ्रीक्वेंटली, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ द वर्ड फ्रीक्वेंटली, 13 लोगों के सेपरेट मार्क्स लिखूं इसके बजाय फ्रीक्वेंटली दो, जो लोग उस ग्रुप में शामिल हो सकते थे, इसलिए उसको फ्रीक्वेंसी यानी उस लोगों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन उन लोगों का, कि जो 30-40 के ग्रुप में शामिल हो सकते थे। यस, इसलिए ये एक स्टैटिस्टिक्स का टर्म है, वर्ड है फ्रीक्वेंसी। तो इस 100 लोग थे, इसमें कितना है, इसमें टोटल कितना, करो तो गिनती करो, 13, 27, 30, 23, 5 कितना हुआ टोटल? 98 है ना? अब ये 98 लोगों का वितरण हमने किया, कहां मैं 98 का लंबा लिस्ट बना दी सत्येंद्र भाई, कितना टाइम लगता? हाँ, और अभी हमने क्या किया, इस 98 को क्या कर दिया, थोड़ो में बांट दिया, तो इसलिए इसको नाम पड़ा फ्रीक्वेंसी। अच्छा, हिंदी में इसको आवृत्ति वितरण कहते हैं। अच्छा, सर्कल को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्कल, एक आप ट्रायंगल बनाते हो, स्क्वायर बनाते हो, फिर सर्कल बनाते हो, ये बहन बोल रही है वृत्त, किसने किसने सुना है ये शब्द वृत्त, सुना है? ओके, तो जो लोग उस ग्रुप में बार बार आ रहे हैं, इसलिए वृत्त से आवृत्ति बना है, वृत्त शब्द से आवृत्ति शब्द बना है, और डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वितरण, आवृत्ति वितरण। फिर मुंह तो नहीं बिगाड़ोगे ना, क्या ये सब हिंदी के वर्ड है, बिगाड़ना नहीं मुंह, तुम्हारा नाम मंजू है, या तुम्हारा नाम कुछ भी है तो कोई दे सुन करके मुंह बिगाड़े तो कैसे लगेगा तुमको? आपके शहर का नाम नासिक पड़ा तो पहली बार सुनना होगा तो कैसा लगा होगा? आबू, देख क्यों आबू ही शब्द है? कैन यू क्वेश्चन दैट? ये सब भाषाओं की जाल में अपने को नहीं जाना है। वो कहते आवृत्ति वितरण है तो हमारा क्या जाता है? उसके जन्मदाता ने उसका नाम डाल दिया आवृत्ति वितरण, ठीक है डालने दो। पर मैंने इसका अर्थ बता दिया कि आवृत्ति वर्ड क्यों इसमें डाला गया है। वृत्त से, वृत्त सर्कल को कहते हैं। तो ये जो जो लोग इसमें उस ग्रुप में शामिल है, इसलिए जो बार बार प्रायः वे लोग उस ग्रुप में शामिल है, इसलिए उसको आवृत्ति वितरण कहते हैं। पहले अपने को स्टीफन नाम अच्छा लगता था क्या? बहुत साल पहले। अभी क्या हो गया? क्योंकि फॉरेनर से अभी अपन फैमिलियर हो गए, तो अभी स्टीफन है, जॉर्ज है, पता नहीं क्या क्या नाम है। तो नाउ वी आर यूज्ड टू ना, पहले वो नहीं समझ में आता था, अभी कुछ नहीं लगता है, लाइक दैट ओनली। इसलिए किताब पढ़ते समय ये क्या है, ये क्या है, ऐसा नहीं करना, प्यार से पढ़ना। जो भी नाम है अच्छा है, अच्छा है, ठीक है। तो ये जो 100 बच्चों का मैंने बताया ना आपको कि 100 बच्चे गणित में कितने मार्क्स लेते, ये समझ में आया? अभी इतने बड़े लार्ज डेटा थे तो इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्लासिफाई कर दिया। तो 30 से 40 इसमें एक्चुअली ये मिस्टेक है, 31 से 40 का है ये, और सामने फ्रीक्वेंसी दी है। अब इसी फ्रीक्वेंसी को एक और संक्षिप्त रूप देने के लिए एक और मेथड है स्टैटिस्टिक्स में, कि जो ही 5 लोग हैं तो आप यूं 5 लकीर कैसे करोगे, इस तरह से। तो बार बार आपको गिनती ना करनी पड़े, ये ऐसा समूह मिला। अगर एक ही है तो यहां एक लकीर आएगी। यहां माना 6 लोग हैं, ये 5 हो गया, ये एक कर दिया आपने 6, राइट। तो ये एक तरीका है, एक क्या बोलते कोड, हाँ एक कोड के टाइप, जैसे कोड वर्ड देते हो ना आप, एचसीडी के नंबर देते हो, जैसे कोई छोटा फॉर्म देते हो भाई, कि भाई आबू का कोड वर्ड क्या है वगैरह वगैरह, ऐसे ये संक्षिप्त रूप में इसको मिलान रेखा या टैली बार कहते हैं, ठीक है। हाँ स्कोर बुक में भी ऐसा लिखा जाता है। अब एक और क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल अपनी किताब में दिया हुआ है, तो ये एक्सक्लूसिव क्लास है कंटिन्यूअस सीरीज का। तो 45 to 50 से लेकर 70 to 75, तो मिलान रेखा, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी बताइए, नंबर ऑफ वर्कर्स। तो परसेंटेज अगर निकालने हैं तो यहां बताया हुआ है 6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, फ्रीक्वेंसी का टोटल है 40। अभी कहां पर आगे चलकर आपको समझा रही हूं इसकी लैंग्वेज, कैसे संक्षिप्त कोड यानी वर्ड इसमें यूज होते हैं। कहीं लिखेंगे फ्रीक्वेंसी को एफ, राइट, कहीं लिखेंगे टोटल नंबर को एन, कहीं लिखेंगे एक्स, राइट, सबका मतलब एक ही होता है। तो कहीं कहीं आप अभी वेरिएशन, इस लैंग्वेज का वेरिएशन भी देखते जाए। तो यह टोटल नंबर है, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 40। तो 6/40 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो 15%। तो परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करनी है वो इसमें लिस्टिंग है, और बाजू में उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कि फर्स्ट 6 है, फिर 7 है, फिर 10 है, तो 6/40 इज इक्वल टू 0.150। तो कैसे ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में कंपैरिजन होती है, और इसी तरह से फिर 7/40 इज इक्वल टू 0.175। अभी आपका एक प्रश्न मैं आपका उत्तर देना चाहूंगी, क्या परीक्षा में ये पूछेंगे ये टेबल? नहीं, ये एक सीखने के लिए सिलेबस में शामिल किया जाता है, क्योंकि परसेंटेज भी कैसे निकालने हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कैसे निकालनी है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो आपको यहां सिखाया जाता है। इस पर खास फोकस आप न करें, बाकी वो जो प्रीवियस जो थे ना क्लास, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, ओपन एंडेड क्लासेस, क्लास इंटरवल, ये जरूर आप करें, उस पर आपको क्वेश्चन आएगा। पर ये आपको परसेंटेज नहीं आया, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इस पर कोई खास नहीं कोई पूछेगा। अभी अभी नहीं नहीं पूछेगा, आप पर सब कृपा करते हैं सब लोग, आप पर बहुत दया करते हैं सभी लोग। पूछेंगे तो आपको फॉर्मूला दे दी है मैंने, आप फॉर्मूला नोट भी कर लो, आप वहां परसेंटेज के नीचे लिखो 6/40 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू, ये जो परसेंटेज है ना उससे नीचे लिखो 6/40 मल्टीप्लाइड बाय 100/1 इज इक्वल टू 15%। वो भी कर सकते, वैसा भी लिख सकते, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, एफ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स मल्टीप्लाइड बाय 100। फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आप लिख सकते हैं, रिलेटिव का फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, रिलेटिव का टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी एक और छोटी सी बात, यदि आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है मानो 5, 7, 9, 6 और 3, ये दी हुई है ना, इस टेबल में भी दी हुई है ना, वर्ग तो दिया हुआ है 70 to 80, 80 to 90 इत्यादि, 110 to 120 राइट, क्लास तो दे दिया है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, 7 ठीक है, यहां तक क्लियर है ओके। अब ये हो गई फ्रीक्वेंसी, पर अगर आपको इसकी सीएफ निकालनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, तो क्या मेथड है 5+7 राइट, तो 5+7 इज इक्वल टू, यहां कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा, यहां क्या आएगा 12, फिर 12+9 21, फिर 21+6 27, 27+3 ठीक है ओके, क्लियर हो गई अभी यहां तक, समझ में आ गई बात। अभी यहां हाइट इन सेंटीमीटर दिया है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये कौन थे 5, 7 वगैरह वगैरह वगैरह, तो उस क्लास में उस कैटेगरी में इतने स्टूडेंट्स थे, 70 to 80 में 5 स्टूडेंट्स थे राइट है, तो इतने सेंटीमीटर वाले 5 थे, इतने 80 से 90 सेंटीमीटर वाले 7 थे ठीक है। अगर अभी आपको समझना है, अभी ध्यान से सुनना थोड़ा सा है, क्योंकि ये टॉपिक इसके कनेक्टेड ही है, ये वो क्या सिखा रहे हैं कि डेटा जब हमारे सामने आते हैं, आंकड़े जब आते हैं, तो अगर हम आंकड़ों को विविध रूप से स्टडी करें, उसको ऑब्जर्व करें, उन्हें एनालाइज करें, तो हमें बहुत कुछ उससे सीखने को मिल सकता है इन आंकड़ों को, जिसके आधार से हम अपना कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो आप डेजर्टेशन में जिस विषय पर संशोधन करेंगे उसके जो आप आंकड़े बनाएंगे, तो कहीं आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हेल्प कर सकती है, और कहीं आपको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो भी आपको हेल्प कर सकती है। तो कैसे है कि यहां पर बताया है आपको, ये जो फोर्थ कैटेगरी अभी आ रहे हैं अपन, थर्ड कैटेगरी तक सीख लिया, यहां तक समझ में आया, जो आपको नोट्स दिया उसमें ये एग्जाम्पल मैंने डाला, ये अपनी किताब में नहीं है, अपनी किताब में भी एग्जाम्पल है, पर उससे भी थोड़ा जल्दी याद रह जाए इसलिए आपको ये एक सरल सा एग्जाम्पल आपके इसमें नोट्स में मैंने दूसरा निकाल के दिया, ताकि आपको एग्जाम में याद रह जाए। तो वो क्या कहते हैं कि 70 to 80 में तो भाई 5 लोग हैं, इस सेंटीमीटर की कैटेगरी में तो 5 लोग हैं, पर 90 तक कितने लोग होंगे किशोर भाई, 5 और 7 मिस कितने हो गए 12 राइट है। तो वो यहां पर ऊपर से नीचे आना, इसको कहते हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर 5+7+9 इज इक्वल टू, यानी 5, 7 और 9 को जोड़ दिया, तो कितने लोग हैं 100 में 100 तक के सेंटीमीटर वाले हाइट वाले कितने लोग हैं भाई 21 फिर 110 तक की हाइट वाले कितने लोग हैं 27 है एंड 120 में तो 30 ही रहेंगे वो तो नेचुरली इट्स क्लियर ना ओके ऐसे अभी पहले अपन ऊपर से नीचे अभी नीचे से ऊपर जा रहे हैं ओके तो ये 120 में कितने स्टूडेंट्स इस हाइट में कितने स्टूडेंट्स होंगे 3 फिर 110 में कितने स्टूडेंट्स होंगे 3 + 6 = 9 ऐसे करके करके आपने ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपने बना लिया ना तो इस रीति से भी अगर आप रिवर्स में भी आंकड़ों को पढ़ेंगे तो उससे भी आपको लिखने के लिए अपने निष्कर्ष अपने कंक्लूजन्स अपना इन्फरेंस डिराइव करने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को स्टडी करेंगे तो समझ में आ जाएगा ठीक है ना अभी कोई टेबल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मानो इवन नंबर की है तो बीच में उसका हम मीन मोड या एवरेज वैल्यू जब निकालते हैं तो दोनों तरफ जब समान आता है पहले फ्रीक्वेंसी राइजिंग है फिर ऐसे है फिर घटती जाती है मानो कोई आंकड़े ऐसे है तो ये जो बीच की वैल्यू है ना आगे आपको बताएंगे वो ग्राफ भी है जो एवरेज वैल्यू मीन मोड मीडियन की तो जहां दोनों तरफ पहले राइजिंग है फिर घटती है ऐसे नहीं राइज हो रही है फिर घट रही है फिर राइज हो रही है फिर घट रही है फिर राइज हो रही है फिर घट रही है ऐसा अगर ग्राफ है तो उसमें ये सेंट्रल में मीन मोड मीडियन तीनों एक एवरेज वैल्यू नहीं होगी और ऐसे ग्राफ में जब आंकड़े कुछ आंकड़े ऐसे भी होते हैं जब कुछ आंकड़े ऐसे नहीं होते हैं तो उसको कुर्टोसिस विषमता कहते हैं नहीं उसके घटाव एवं बढ़ने में समानता नहीं है ठीक है ना ये एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट अभी आपको समझा रहे हैं फिर इस विषय को आगे भी चैप्टर 2 में हम और भी डिटेल में समझेंगे तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अभी चल रहा है ना फिर कल उठ करके मैं दूसरे टॉपिक सिखाऊं तो इसका अर्थ ना समझो इसलिए अभी एक बार आज बता रहे हैं दोबारा इसको रिपीट करूंगी मैं इस ग्राफ को इट्स क्लियर ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का है ना एकदम फिक्स बैठ गया समझ में आ गया ना तुमने पर्सनली समझाई दू छो पर्सनली अच्छा अभी आगे आगे करूं क्या थोड़ा समय अभी करूं सोचू पड़ से मैंने अत्यारे एकदम ध्यान नहीं आवतु बोलो हैं